जमानों की उमंग, बाब नंबर 36, ईमान से छूना। ग्रासिनियों से वापस मगरबी किनारे पर पहुंचने के बाद यसु ने देखा कि उससे मिलने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा है। उन्होंने यसु को पुरतपाक खुशामदीद कहा। वो उन्हें तालीम देने और शिफा बख्शने के लिए थोड़ी देर समंदर किनारे ठहरा और उसके बाद मत्ती महसूल लेने वाले के घर ज़ियाफ़त के लिए सुधारा। यहां उसे एक शख्स यायर नामी हैकल का सरदार मिला। यहूदियों का यह सरदार बड़ी परेशानी के आलम में था। उसने यसु के कदमों में गिरकर मन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तो आकर उस पर हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। मरकुस 23:5। यसु फौरन उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। बेशक शागिर्दों ने यसु के कई मोजज़ात देखे थे, मगर वो इस बात पर हैरान थे कि यसु क्यों कर उस मगरूर शरा के आलम के साथ चल पड़ा है। ताहम वो भी अपने आका के हमरा चल पड़े। उसके साथ बहुत से लोग ऐसे भी थे जो मोजज़ा देखने के मुश्ताक थे। यायर का घर बहुत दूर ना था, मगर यसु और उसके साथी धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि भीड़ उसके चारों तरफ उसे घेरे हुए थी। जू जू देर हो रही थी, बाप के सबर का प्याला लबरेज होता जा रहा था, मगर यसु बदस्तूर उन दुखियों को राहत, आराम और शिफा देता जा रहा था जो उसकी राह में आ जाते। जब वो अभी राह में ही थे, किसी ने खबर दी कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ न दे। यसु के कानों में भी ये खबर पड़ी। उसने यायर से कहा, खौफ न कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। यायर यसु के मजीद करीब हो गया और दोनों जल्दी जल्दी सरदार के घर पहुंचे। मातम करने और बांसली बजाने वाले पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उनके आहू नाले से तमाम फजा सोगवार हो गई। खुदावंद यसु मसीह ने उन्हें ये कहकर खामोश किया, तुम क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। मरकुस 39:5। वो ये सुनकर हंसने लगे क्योंकि उन्होंने बच्ची को मौत की गोद में देख लिया था। वो इसलिए हंसे ताकि उसका मजाक उड़ाएं। उस पर यसु लड़की के मां बाप के सिवा सबको बाहर कर दिया। उसके साथ उसके तीन शागिर्द पतरस, याकूब और यूहन्ना भी थे। ये सब लोग मसीह के साथ कमरे में दाखिल हुए जहां लड़की मरी पड़ी थी। यसु ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मरकुस 14:5। चुनाचे लड़की के बेजान जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर वो इतने लोगों को अपने करीब देखकर हैरान रह गई। लड़की के मां बाप ने उसे जिंदा पाकर अपने बाजों में भींच लिया और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। हैकल के सरदार के घर जाते हुए यसु मसीह को रास्ते में एक खातों मिली जो 12 बरस से बीमार थी और उस बीमारी ने उसकी जिंदगी अजीरन बना रखी थी। उसको 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। अब तो तबीबों ने उसकी बीमारी को ला इलाज करार दे दिया था, लेकिन जब उसने सुना कि यसु में शिफा बख्शने की कुदरत है, तो उसकी बुझी हुई उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। उसे पूरा एहसास हो गया कि अगर वो उसके पास पहुंच जाए तो जरूर शिफा पाएगी। कमजोरी और बीमारी के बावजूद वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई साहिल समंदर पहुंची जहां यसु तालीम दे रहा था। उसने यसु के पास जाने की कोशिश की, मगर भीड़ के सबब उसके पास न पहुंच सकी। फिर मत्ती के घर भी उसने यसु के पास पहुंचने की जदूजहद की, मगर नाकाम रही। अब वो सख्त मायूस हो गई, मगर भीड़ को चीरता हुआ यसु आहिस्ता आहिस्ता उस जगह आया जहां वो बीमार खातों खड़ी थी। बीमार खातों के लिए ये बड़ा ही सुनहरी मौका था। वो अब अजीम तबीब की हुजूरी में थी, मगर इतने शोर शराबे और अफरा तफरी में वो उससे कलाम नहीं कर सकती थी, सिर्फ उसकी झलक देख सकती थी। उसे डर था कि ये मौका भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वो यसु की तरफ बढ़ी और दिल ही दिल में ये कह रही थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। मरकुस 28:5।
जो नई यसु उधर से गुजर रहा था तब वो उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ और फिलफोर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। उसने ईमान से यसु को छुआ और शिफा पाई। उसका मर्ज जाता रहा और वो मुकम्मल सेहतियाब हो गई। शुक्रगुजार दिल के साथ वो भीड़ से निकलकर जाना चाहती थी, जबकि यसु अचानक रुक गया और मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? लोग यसु के इस सवाल पर बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो तो उसे चारों तरफ से छू रहे थे। इस पर पतरस ने जवाब में कहा कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तो कहता है मुझे किसने छुआ? यसु ने फरमाया, मुझे किसी ने छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। लूका 45:8-46। क्योंकि यसु मसीह आम छूने और ईमान से छूने में बखूबी इम्तियाज कर सकता था, इसलिए यसु ने बतकरार पूछा कि किसने मुझे छुआ है। इस औरत ने जब यह देखा कि मैं खुद को अपने शाफी से छुपा नहीं सकती तो उसके कदमों में गिरकर अपनी सारी कहानी बयान की, और ये भी कि अब मैं शिफा पा गई हूं। यसु ने उसे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। यसु ने उस बात की हौसला अफजाई न की जैसा कि बास तू हम परस समझते थे कि महज पोशाक को छूने से शिफा मिली है, बल्कि यसु ने वाजह तौर पर ऐलान किया कि तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी है। वो भेड़ जो उस पर गिरी पड़ती थी, उनके छूने से कोई मौजजा वकू में ना आया, लेकिन जब ईमान से बीमार औरत ने छुआ तो वो शिफा पा गई। रूहानी चीजों का भी यही हाल है। रस्मी मजहबी कलाम और बगैर ईमान के दुआ से कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह यसु में नाम निहाद ईमान रूह की शिफा का बायस नहीं बनता। निजात बख्श ईमान सिर्फ सच्चाई को तस्लीम करना ही नहीं, वो जो उस इंतजार में रहता है कि जब मुझे पूरा मजहबी इल्म हासिल होगा तो फिर मैं ईमान का इजहार करूं। यकीन जानिए, ऐसा शख्स खुदा से बरकात हासिल नहीं कर सकता। उसी ईमान से हमें फायदा हो सकता है जो ईमान हमें यसु को निजात दुहिंदा तस्लीम करने की तरगीब दे। हकीकी ईमान जिंदगी का नाम है। खुदावंद यसु मसीह चाहता था कि शिफा पा जाने वाली खातून खुदावंद की बरकात को तस्लीम करे जो उसने पाई है। इंजील जो हमें बख्शिशें अता करती है, वो दरपर्दा इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बख्शिशों और मेहरबानियों का इकरार भी करें। खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो कि मैं ही खुदावंद हूं। यसाया 10:43-12।
खुदावंद यसु मसीह को दुनिया पर जाहिर करना और खुदावंद खुदा की भलाई का इकरार करना हम पर फर्ज है। जैसे खुदावंद के मुकद्दस लोगों ने हम पर जाहिर किया है, हमें उसके फजल को तस्लीम करना है। तब हमारी जाती गवाही सबसे मौसर होगी। जब हम खुदावंद की सरगर्म इलाही कुदरत को अपने जरिए से जाहिर करते हैं तो उसके गवाह ठहरते हैं। हर एक शख्स की जिंदगी दूसरे शख्स की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है, इसी तरह उनके तजर्बात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। खुदावन चाहता है कि हम में से हर एक की फर्दन फर्दन हमदो सताइश उसके हुजूर पहुंचे। जब 10 कोड़ी शिफा के लिए यसु के पास आए तो उसने उनको काहिन के पास भेजा ताकि वो उन्हें देखे, आया वो कोड़ से शिफा पा गए हैं या नहीं। जब वो राह में थे तो 10 कोड़ी शिफा पा गए। सिर्फ एक कोड़ी खुदावन मसीह की शुक्रगुजारी के लिए वापस आया, मगर बाकी 9 ने अपनी राह ली। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो वही काम कर रहे हैं? खुदावन खुदा तो हर लम्हा नस्ल इंसानी को फैज पहुंचाने के लिए बेशुमार करिश्मे दिखा रहा है। वो बीमारों को शिफा बख्श रहा है। वो हमें आए रोज ऐसी आफात से बचा रहा है जिनको हम देख भी नहीं सकते। वो अपने फरिश्तों को हुक्म करता है जो हमें देखे और अनदेखे खतरात से महफूज रखते हैं। जबूर 6:91।
खुदा ने बनी नौ इंसान पर कितनी मेहरबानियां कर रखी हैं, मगर उनके दिल मुतासिर नहीं होते। उसने उन्हें निजात बख्शने के लिए आसमान का बेशकीमत तोहफा दे दिया है, मगर वो उसकी अजीम मोहब्बत को पहचानते ही नहीं। बरक्स उसके, वो अपने दिलों को उसके फजल के लिए बंद कर लेते हैं
और उसके शुक्र गुजार नहीं होते। वो सहरा की झाड़ियों की तरह हैं जिनके हलक में प्यास की वजह से कांटे चपते रहते हैं। उन्हें भलाई और खुदा की मेहरबानी की कोई खबर नहीं। खुदा की हर मेहरबानी को अपने जहन में ताजा रखने से हमें ही फायदा है। उससे ईमान मजबूत होता है और खुदा से हम पहले से कहीं ज्यादा बरकत पाते हैं। खा खुदा से हमें छोटी से छोटी बरकत भी क्यों ना मिली, वो दूसरों की बड़ी बड़ी बरकत की निस्बत हमें जेजा हौसला अता करती है। दूसरों का पुख्ता ईमान और हासिल करदा बरकत हमारे लिए क्यों कर इतना हौसला बढ़ा सकती हैं जितनी वो बरकत जो हमें हासिल है। वो रूह जो खुदा के फजल का जवाब देती है, वो उस बाग की मानिंद है जिसे सैराब किया गया हो। उसकी सेहत तेजी से बहाल होगी, उसका नूर जुल्मत में से चमकेगा और खुदावन का जलाल उस पर जलवागर होगा। आइए हम खुदावन की मेहरबानियों को याद करें और उसकी बेशुमार रहमतों को भूल न जाएं। बनी इसराइल की तरह हम अपने पत्थरों को गवाही के लिए नसीब करें और जो कुछ खुदावन ने हमारे लिए किया है उन पर कंधा करें और माजी की हिफाजत और मेहरबानियों को याद करते हुए शुक्रगुजार दिल के साथ कहें, खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिले, मैं उनके इवज में उसे क्या दूं? मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। मैं खुदावन के हुजूर अपनी मिन्नतें अपनी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। जबूर 12:116-14।